नमस्कार भारत, 1 जून दिन सोमवार, मैं हूं विनीत खरे। अमरीकी सेनेट में आतंकवाद निरोधक कानून को लेकर अहम बहस जारी। मोदी के इसराइल जाने से अरब देशों के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?
इसराइल से दोस्ती हुई है, हमारा ट्रेड अरब देशों से कई गुना बढ़ गया। 40 से 45 50 साल के बाद सऊदी किंग हिंदुस्तान आए।
नए किसान चैनल पर किसानों ने कहा,
किसान को ये लोग जानकारी क्या देंगे, किसान को बहुत खुल जानकारी पहले से रहता है।
टीवी में दिखाने से कोई किसान की आर्थिक स्थिति तो नहीं सुधरने वाली है।
सर्विस टैक्स बढ़ने से आज से मोबाइल बिल, रेस्तरों में खाना महंगे। माओवादियों से निपटने के लिए बन रहे हैं फोर्टिफाइड थाने। साथ में वसुतुल्ला खान का रेडियो ब्लॉग और अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी सेनेट में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जासूसी कार्यक्रम पर रविवार को गंभीर और दुर्लभ बहस हो रही है। रिपब्लिकन सेनेटरों के बीच गतिरोध के कारण अमरीकी नागरिकों की फोन जासूसी का कार्यक्रम आज मध्यरात्रि से कुछ घंटों के लिए बंद भी हो सकता है। जासूसी कार्यक्रम पर फैसला लेने के लिए हो रही बहस में रिपब्लिकन सेनेटर एकमत नहीं हो सके हैं। साथ ही अमरीकी कांग्रेस के निम्न सदन में पहले से ही पारित किए गए एक अलग सुरक्षा बिल पर भी बहस जारी है। शीर्ष डेमोक्रेट सेनेटर हैरी रीड ने कहा है कि रिपब्लिकन नेता एक स्वनिर्मित खतरे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा और CIA प्रमुख जॉन ब्रेनन ने कहा है कि यदि जासूसी कार्यक्रम जारी नहीं रखा गया तो देश की संभावित चरमपंथी खतरों से निपटने की क्षमता प्रभावित होगी। CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन ने बताया कि फोन निगरानी क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, ये साधन हमें विभिन्न चरमपंथी समूह क्या कर रहे हैं यह समझने के लिए बेहतर क्षमता देते हैं। इसलिए हमारी जरूरत है कि हम एक सामरिक खुफिया दृष्टिकोण रखें। साथ ही हमलों को रोकने के लिए हमें देश के भीतर भी उन क्षमताओं और तकनीकी साधनों की जरूरत है। ये थे CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन के शब्द। भारत में आज से सेवा कर की बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। सेवा कर 12.36% से बढ़कर 14% हो जाएगा। यानी आज से आपके मोबाइल फोन, रेस्तरां में खाने और यात्रा समेत कई बिल महंगे हो जाएंगे। पूर्वी अफ्रीकी देशों के नेताओं के सम्मेलन में अपने मुद्दों पर ठोस भरोसा न मिलने पर बुरुंडी के विपक्ष ने लोगों से सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। एक विपक्षी कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें हताशा है कि सम्मेलन में राष्ट्रपति पियर नुकुरुन्ज़िज़ा के फिर से चुनाव न लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। इसके बजाय तंजानिया की राजधानी दारुसलाम में हुए इस सम्मेलन में बुरुंडी में चुनावों को 6 सप्ताह टालने और हिंसा रोकने का आह्वान किया गया। बुरुंडी की सरकार ने प्रस्तावों का स्वागत किया है। राष्ट्रपति पियर नुकुरुन्ज़िज़ा के तीसरी बार चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही बुरुंडी में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के पूर्व जनरल डेविड पेट्रेस ने इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से निपटने के लिए अमेरिकी रणनीति में बदलाव की सलाह दी है। BBC को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इराक सरकार के साथ काम कर रहे अमेरिका को सैन्य और राजनीतिक मोर्चों पर अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन्होंने कहा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इराकी सेनाओं की बटालियन स्तर पर मदद के लिए अधिक अमरीकी सलाहकार तैनात किए जाएँ। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। अमरीकी संसद एक महत्वपूर्ण बैठक में एक आतंकवाद निरोधक कानून की अवधि को खत्म होने से बचाने के लिए बहस कर रही है। इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा एजेंसियों को नागरिकों के फोन डेटा को इकट्ठा करने की अनुमति थी। इस कानून का नाम है पेट्रियट एक्ट और इसकी अवधि स्थानीय वक्त के मुताबिक मध्यरात्रि को खत्म हो रही है, जिसमें कुछ घंटे ही शेष हैं। सेनेटर्स पेट्रियट एक्ट की जगह लाए जाने वाले USA फ्रीडम एक्ट नाम के कानून पर भी बहस कर रहे हैं। USA फ्रीडम एक्ट के अंतर्गत सुरक्षा एजेंसियों के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगाह किया है कि अगर पेट्रियट एक्ट की अवधि समाप्त हो जाती है तो अमेरिका को पेश खतरे बढ़ जाएंगे। न्यूयॉर्क से पत्रकार सलीम रिजवी।
सेनेट में 17 के मुकाबले 77 वोटों से वो बिल आगे बहस के लिए बढ़ाया गया है जिसमें अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या NSA द्वारा सारे अमरीकी लोगों का फोन डेटा इकट्ठा किए जाने वाले कार्यक्रम का अंत हो जाएगा। लेकिन इस USA फ्रीडम नामक कानून पर मतदान कुछ दिनों तक नहीं होने की उम्मीद है, जिसके कारण पेट्रियट एक्ट के 3 अहम हिस्सों की मियाद अमरीकी समय के अनुसार आधी रात को समाप्त हो जाएगी। इस कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियां सारे अमरीकियों के भी फोन डेटा को इकट्ठा कर सकती हैं, जिनमें कॉल करने वाले का फोन नंबर, किसको कॉल किया और कितनी लंबी बात हुई आदि जानकारी शामिल होती है। USA फ्रीडम एक्ट नाम के निगरानी कानून के सेक्शन 215 के तहत सारे अमरीकियों की फोन कॉलों को इकट्ठा किया जाता है और इसी पर कुछ सेनेटर विरोध जता रहे हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लेकिन सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनल ने हताशा जताते हुए कहा कि कुछ लोग पेट्रियट कानून को सिरे से ही खत्म करना चाहते हैं। इस कानून का विरोध करने वालों में सबसे मुखर विरोधी हैं केंटकी राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल। उन्होंने अपनी ही पार्टी के अधिकतर सेनेटरों का विरोध करते हुए इस निगरानी कानून की जमकर आलोचना की। सेनेट में बोलते हुए सेनेटर रैंड पॉल ने कहा,
द प्रेसिडेंट नाउ स्कूपिंग अप ऑल योर रिकॉर्ड्स इललीगली, वी आर कलेक्टिंग ऑल अमेरिकन सिटीजंस रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ द टाइम।
सेनेटर रैंड पॉल कह रहे थे, राष्ट्रपति बराक ओबामा ये कानून गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं, सारे अमरीकी लोगों के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, ये हमारी आजादी का हनन है, हमने तो आजादी के इन्हीं अधिकारों के लिए क्रांति भी लाई थी, क्या हम ये आजादी ऐसे ही छोड़ दें? मैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये थे सेनेटर रैंड पॉल के शब्द। सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि जिन लोगों पर शक हो उनकी जानकारियां इकट्ठा की जाएं वारंट लेकर, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। सेनेटर रैंड पॉल 2016 में होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी के उम्मीदवार भी हैं। उधर FBI का कहना है कि पेट्रियट कानून के इन अहम अंशों के जरिए जानकारी इकट्ठा करके चरमपंथी हमले रोकने में मदद मिलती है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया जॉन ब्रेनन ने भी कहा कि सेनेट में इस बहस और वोट पर दुनिया भर के आतंकी भी नजरें गड़ाए हैं। सेनेटर मिच मैकोनल ने पेट्रियट कानून के 2 अहम लेकिन कम विवादित अंशों को मंजूरी के लिए शामिल कर लिया है, जिनमें एक लोन वुल्फ या अकेला आतंकी से संबंधित कानून है जिसमें सरकार को ऐसे संभावित आतंकियों की निगरानी की इजाजत होती है जो किसी आतंकी गुट से तो न जुड़े हों लेकिन सुरक्षा के लिए घातक हों, और दूसरा कानून है रोविंग वायर टैप्स, जिसके तहत आतंकियों के फोन की निगरानी करने के लिए आतंकी द्वारा फोन बदलने की सूरत में बार बार वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब USA फ्रीडम एक्ट पर 30 घंटे तक बहस होने के आसार हैं और उसके बाद उस कानून पर मतदान होना है। इस कानून को सेनेट में मंजूरी के लिए 53 वोटों की जरूरत होगी। उम्मीद की जा रही है कि अब यह कानून आसानी से मंजूर हो जाएगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित इसराइल दौरे के बारे में जानकारी दी है। हालांकि ये दौरा कब होगा ये भी साफ नहीं है। अगर ये दौरा होता है तो नरेंद्र मोदी इसराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने मध्य पूर्व मामलों की जानकार कमर आगा से पूछा कि भारत और इसराइल के बदलते रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री के दौरे को वो किस तरह देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी बल्कि इससे पहले जनसंघ के समय से ये लोग डिमांड कर रहे थे कि इसराइल से रिलेशन अच्छे होने चाहिए और हमेशा से इनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी था। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है हिंदुस्तान का मानना यह है कि अमेरिका का जो रोड टू अमेरिका है वो तेल अवीव से होती भी जाती है। ये भी था कि एक बड़ा वेपन सप्लायर भी हिंदुस्तान का बन के इमर्ज हुआ और उसकी वजह से भारत को अमेरिका में दोस्ती में भी मदद मिली। तो बहुत से फैक्टर्स थे।
इसराइल को मान्यता मिली, इसराइल का गठन हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दुनिया में मान्यता थी, लेकिन उससे रिश्ते कायम करने या उसके नज़दीक जाने में भारत की सरकार को 90 के दशक तक का समय लग गया, काफ़ी हिचक रही। क्या वो हिचक दूर हो गई है, अगर फलस्तीनी मुद्दे को लेकर भी कोई हिचक थी तो?
मैं समझता हूँ वो हिचक अब नहीं रही, वो तो दूर हो गई। अब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और ये फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में उसका बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिक्स बहुत पीछे चली गई है, बैक सीट में आ गई है। तो इकोनॉमिक्स में देखा जाए कोऑपरेशन हमारा इजराइल के साथ बहुत है और जॉइंट वेंचर्स भी हैं, फिर उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन में भी हमारा बहुत कोऑपरेशन है और आने वाले समय में ये प्रोडक्शन डिफेंस प्रोडक्शन में उम्मीद है कि इजराइल का और भी रोल बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी बहुत सी चीज़ों में होने की संभावना है। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड रखा, जब भी पैलेस्टाइन का मसला आया उसने हमेशा यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ वोट दिया है अभी तक और लगातार उसकी समर्थन करता रहा है। यही नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एम्बेसी भी यहाँ पे है, मौजूद है, और अफसोस की बात यह है कि अरबों ने इसका फायदा नहीं उठाया, वरना हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जो जो कि जिसके संबंध इसराइल से भी थे और अरबों से भी थे। जब से इसराइल से दोस्ती हुई है हमारा ट्रेड अरब देशों से कई गुना बढ़ गया, और फिर उसके बाद यही नहीं हुआ बल्कि 40 या 45 50 साल के बाद सऊदी किंग हिंदुस्तान आए, 40 साल के बाद कुवैत के बादशाह भारतवर्ष की विजिट हुई, उनकी रिलेशन हमारे इसराइल से संबंध होने के बाद अरबों से और अच्छे हो गए, ये अभी एक अजीब बात नजर आती है। और दूसरी बात ये था कि बहुत से अरब देश खुद इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, बड़े देश जैसे जॉर्डन ने किया, इजिप्ट की ने, सबसे बड़ा तो इजिप्ट है, इजिप्ट ने पीस ट्रीटी की।
ये थे कमर आगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किसानों को संबोधित किया। मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को हाल ही में शुरू किए गए किसान चैनल के फायदे बताए, लेकिन इस चैनल पर किसानों की क्या राय है, जाना वात्सल्य राय ने।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार लागू करने के फैसले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए किसानों से अपने मन की बात की। मोदी का फोकस अध्यादेश के बजाय हाल में शुरू हुए किसान चैनल पर था।
मेरी दृष्टि में किसान चैनल एक खेत खलियान वाली ओपन यूनिवर्सिटी है, और ऐसी चैनल है जिसका विद्यार्थी भी किसान है और जिसका शिक्षक भी किसान है।
मोदी के मन की बात को जानकर किसान कितने उत्साहित हैं ये जानने के लिए बीबीसी ने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसानों से बात की। बिहार के बक्सर के किसान संजय कुमार ने बीबीसी से कहा,
किसान को ये लोग जानकारी क्या देंगे, किसान को बहुत खुद जानकारी पहले से रहता है, ये लोग केवल किसान को सहायता दिलवाए ना।
वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किसान दिलीप कुमार यादव ने कहा कि अभी तक किसानों तक जानकारी पहुंचाने के सरकार के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं।
किसान का माल कौड़ियों के भाव में बिक रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान फांसी पे लटक के मर रहा है। तो किसानों के लिए चैनल की जहां तक बात है, चलो अच्छा है, जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति है वो किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक 24 घंटे के चैनल की व्यवस्था की है। हो सकता है उसको देख के किसानों में कुछ जागृति आए। अभी तक सरकारी रिपोर्टें हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो देश भर में स्थापित है, जिन पर करोड़ों एक एक केंद्र पर करोड़ों करोड़ों रुपए सालाना खर्च होता है, वो उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है किसानों को वो 4% हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के किसान आनंद मिश्रा का कहना है कि वो ये नहीं मानते कि चैनल के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आएगा।
किसान की मदद यदि उनको करना है तो किसान के जो अनाज के उत्पादन है उनकी कीमतों को तरह से रखा जाए, औद्योगिक की खेती एक फायदे का धंधा हो, टीवी में दिखाने से कोई किसान की आर्थिक स्थिति तो नहीं सुधरने वाली है।
कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सिर्फ एक चैनल लाने से किसानों की समस्या नहीं सुलझेगी।
खेती जो है ऐसे भयंकर संकट से गुजर रही है जिसका उपचार कहीं नजर नहीं आता, वो किसान चैनल के माध्यम से तो उपचार नहीं हो पाएगा। वो करना है तो किसान का जो आय है या किसान को वेतन तो नहीं मिलता, लेकिन किसान की जो इनकम क्राइसिस है सबसे भयंकर है, और उसकी तरफ कहीं भी किसी प्रायोरिटी में जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं हो रहा।
किसानों और उनकी समस्याओं का आकलन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अगली बार जब मोदी मन की बात करेंगे तो उन्हें खेती से जुड़ी मूल समस्याओं के समाधान का इंतजार रहेगा। वात्सल्य राय, बीबीसी, दिल्ली।
पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल नेता चौधरी अजीत सिंह किसान चैनल को किसानों की समस्या का हल नहीं मानते, उनसे बात की वात्सल्य राय ने।
देखिए, मार्च अप्रैल में जिस तरह बारिश हुई है, जिस तरह आंधी चली है, जिस तरह ओला गिरा है, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। अच्छा, किसान परेशान था क्योंकि इस बार अभी गन्ने का दो साल का, पिछले दो साल का 21,000 करोड़ रुपया मिल मालिकों ने किसानों को नहीं दिया। इस बार धान का दाम, पैड़ी का दाम प्रति क्विंटल जो 3,500 से 4,000 रुपए होता था वो 1,500 से 1,800 रुपए रहा है, और आलू का दाम भी उसको जो पिछले साल मिला था उससे आधा मिलने वाला है। तो किसान कर्ज में डूबा हुआ है टोटली, और किसान को चैनल से फायदा होगा, और जो आप लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगला शायद सूखा भी पड़ सकता है, तो किसान की हालत तो बहुत खराब है। मैं तो मोदी साहब से कहूंगा अपने मन की बात करने के पहले आप किसानों के मन की बात सुन लीजिए कहीं जाके।
सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने किसानों को जो मुआवजा अभी तक मिलता था रिकॉर्ड उसमें वृद्धि की है।
उन्होंने 50% किया है, लेकिन बहुत से स्टेट्स कह रहे हैं अभी तक उनके पास पैसा नहीं आया। एग्रीकल्चर का बजट 10.4% कम कर दिया। आप किसी गांव के, कस्बे के बाजार में जाके देख लीजिए, कोई रौनक नहीं रह गई है क्योंकि किसान के पास पैसा ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अभी आप मथुरा गए थे प्रधानमंत्री एक साल का जश्न मनाने के लिए, वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ समझा देते लैंड एक्विजिशन बिल में क्या किसानों के हक में, एक शब्द नहीं बोले उस बारे में, वहाँ बता देते कि अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं आपके, एक शब्द नहीं बोले उस बारे में।
ये थे अजीत सिंह। आज यानी पहली जून से सर्विस टैक्स में करीब 1.6% का इजाफा हो जाएगा। इससे मोबाइल बिल, रेस्तरों में खाना और हवाई यात्रा करने समेत कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से अनुराग शर्मा।
जून की तपिश के बीच आज से आपको अपनी जेब पर महंगाई की आंच भी महसूस हो सकती है। वित्त मंत्री ने बजट में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स के जिस इजाफे का ऐलान किया था वो वृद्धि आज से प्रभावी हो रही है। अभी तक शिक्षा उपकर मिलाकर सर्विस टैक्स 12.36% था जो अब 14% हो गया है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आलोक पुराणिक का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र दुधारू गाय की तरह है और सरकार आय बढ़ाने के लिए उस पर निर्भर है।
महंगाई की ये किस्त काफी बड़ी पड़ने वाली है और जेब से अच्छा खासा पैसा निकलेगा, क्योंकि 100 रुपए की GDP अगर तो 65% आ रहा है सर्विसेज से, 15% आ रहा है एग्रीकल्चर से और बाकी का आ रहा है इंडस्ट्री से। अभी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की हालत ऐसी नहीं कि टैक्सेस वहां से ज्यादा ले सके। मैं तो समझता हूँ कि हम सबको मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए आने वाले 1-2 सालों में, ये 14%, 18-19% भी जाएगा।
सर्विस टैक्स बढ़ने से मोबाइल और टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल, होटल में रुकने और रेस्टोरेंट में खाना खाने समेत कई सेवाओं के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी। कुरियर, ऐप वाली कैब सर्विस और बोतल बंद पानी भी महंगा मिलेगा। ट्रेन में एसी क्लास के टिकट और माल भाड़े पर लगने वाले सर्विस टैक्स को 3.7% से बढ़ाकर 4.2% कर दिया गया है। कांग्रेस ने सर्विस टैक्स में इजाफे को महंगाई की नई किस्त बताया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने BBC से कहा,
1.6% काफी बड़ा महंगाई की सर्विस टैक्स की दर है जो कि लोगों पे लगेगी और इसके साथ साथ में रेलवे फ्रेट के ऊपर भी पिछले वर्ष एक वर्ष में लगभग 20% का इजाफा हुआ है, उसका भी असर महंगाई के ऊपर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 90,000 करोड़ के लगभग बढ़ने से काफी इसके ऊपर असर पड़ेगा।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस आलोचना को ठीक नहीं मानती। पार्टी के नेता नलिन कोहली ने BBC से कहा,
जो लगभग 1.5% बढ़ रहा है, 10,000 रुपए खर्च करें तो मात्र 160 रुपए सर्विस टैक्स पड़ता है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अच्छी तरह खर्चा करते हैं, जैसे बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या हवाई जहाज से जाते हैं। इस मतलब उस रूप से उस सेगमेंट के लिए गरीबों को तो ये मोर ऑर लेस अफेक्ट करता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको महंगाई से नहीं जोड़ता।
उधर आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि सरकार सर्विस टैक्स बढ़ाने के बजाय आय बढ़ाने के दूसरे विकल्पों पर गौर कर सकती थी। बाजार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आकाश जिंदल ने BBC से कहा,
सरकार को पैसा तो चाहिए बट उसमें मेरे हिसाब से सरकार को सर्विस टैक्स का रेट बढ़ाने की बजाय देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे बढ़ावा देना चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती तो अपने आप जो है सरकार के पास ज्यादा टैक्सेस आ जाते।
कृषि और स्वास्थ्य समेत निगेटिव लिस्ट में शामिल 16 सेवाओं की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बाकी सेवाओं के लिए लोगों को घरेलू बजट में संशोधन करना ही होगा।
रिपोर्ट पेश कर रहे थे अनुराग शर्मा। देश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस 400 फोर्टिफाइड थाने बनाए जा रहे हैं। फोर्टिफाइड थाने यानी सुदृढ़ थाने। रविवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में राज्य के पहले फोर्टिफाइड थाने का उद्घाटन किया। क्या ये थाने उम्मीद पर खरे उतरेंगे, सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की ये खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिलों में थानों पर हमले करके पुलिस के जवानों को मार डालने और हथियार लूटने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि सुकमा जिले के दोरनापाल का फोर्टिफाइड थाना अब संभवतः ऐसे हमलों से बच सकता है। रविवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दोरनापाल के इस फोर्टिफाइड थाने का उद्घाटन किया। आधुनिक हथियार और किले जैसी घेराबंदी, साथ में संचार के तमाम आधुनिक उपकरण, यहाँ तक कि मानव रहित विमानों को उड़ाने की सुविधा भी इस फोर्टिफाइड थाने में है। छत्तीसगढ़ में 75 और अकेले बस्तर में 39 फोर्टिफाइड थाने बनने हैं। रविवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दोरनापाल के जिस थाने का उद्घाटन किया, उस थाने में एक साथ पुलिस के 200 जवान सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। इसके अलावा 2 बैरकों में 160 जवानों के रहने की व्यवस्था होगी। पुलिस का दावा यह है कि ये थाने माओवादियों के सभी तरह के हमले झेलने में सक्षम हैं और इस थाना भवन से चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से हर हमले का जवाब दिया जा सकता है। बस्तर के IG SRP कल्लूरी इस फोर्टिफाइड थाने से बेहद उत्साहित हैं।
ये
अटैक प्रूफ थाना है। 4-5 थाना अभी तैयारी हालत में है, धीरे धीरे प्रोग्राम के तहत सभी थाने यही बनेंगे। 2 करोड़ का थाना बनता है। अभी फर्स्ट फेज में भैरमगढ़ तैयार है, ये भी तैयार है, कोंटा भी तैयार है, फेज बाय फेज जा रहा है। एक समय के बाद सभी थाना फोर्टिफाइड थाना ही बनेंगे बस्तर क्षेत्र। माओवादियों से लड़ने में बहुत फायदा मिलेगा, उनकी सुविधाएं और हमला होने की स्थिति में कैसा उसको रिटेलिएट करना है, और कंप्यूटर, CCTNS, बहुत सारे अभी मॉडर्नाइजेशन के तहत जो भी स्कीम्स आ वो सब इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट अप टू डेट एक मॉडर्न पुलिस स्टेशन होगा, जो खुद अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएगी और बदलते हुए समय के अनुरूप भी रहे। UAVs का हम लोग प्रयोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, वो सबका इसमें कंपैटिबिलिटी और लाइजनिंग रहेगा।
लेकिन इन सर्व सुविधायुक्त थानों से इतर भी कई सवाल हैं। दंतेवाड़ा से प्रकाशित बस्तर इम्पैक्ट अखबार के संपादक सुरेश महापात्र की चिंता कुछ और ही है।
थानों की सुरक्षित होने से काम पूरा नहीं हो सकता। आखिर पुलिस जंगल में माओवादी मोर्चे पर लड़ने जाने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना भवन बनाने मात्र से आम लोगों की सुरक्षा का दावा भी नहीं किया जा सकता।
सवाल कई हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अधिकांश मामलों में जनता के साथ थानों का जो अब तक का रिश्ता रहा है, उसे बदलने में ये फोर्टिफाइड थाने कितने कामयाब होंगे। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
और अब वसतुल्ला खान का रेडियो ब्लॉग।
भारत की आबादी 1 अरब 22 करोड़ है। इसमें से लगभग 55 करोड़ यानी 45% खुद को दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध या कुछ भी नहीं समझते। इन 55 करोड़ को बीफ समेत किसी भी तरह का मांस खाने ना खाने से कोई आपत्ति नहीं, ना उन्हें ये दिलचस्पी है कि आप शाकाहारी हैं कि नहीं, या आप में से कोई सफ़ेद गाय का गोश्त क्यों नहीं खाता और काली भैंस का क्यों खा जाता है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि भारत में जितना भी और जैसा भी बीफ खाया जाता है, उसमें से 75% बीफ वो मित्र खा जाते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। यहाँ पाकिस्तान में हर तरह की ताक झांक है, पर कौन क्या खाता है इसकी किसी को खास परवाह नहीं। ब्राह्मण यहाँ देखने को नहीं मिलता, बनिए और ठाकुर भी आटे में नमक बराबर हैं, और ज़्यादातर हिंदू जातियाँ पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम के बीच और भी सियों मसले हैं, मगर बीफ को लेके कोई ऐसा झमेला नहीं कि सर फुटव्वल हो जाए। बल्कि अक्सर झगड़ा ये रहता है कि कसाई की दुकान पे जो लटका हुआ है ये बीफ है या बीफ का धोखा। इसीलिए हर कसाई बीफ को असली बताने के लिए पशु की असली पूंछ भी लटका देता है, ताकि गाहक को बिना पूछे इत्मीनान हो जाए कि ये गधे का गोश्त तो बहरहाल नहीं है। मगर मुझे बीफ बाजी से नहीं, श्री मुख्तार अब्बास नकवी की बयानबाजी से परेशानी है कि भारतवर्ष में जो भी बीफ खाने के लिए मरा जा रहा है वो पाकिस्तान जाए। इससे दो बातें तो तुरंत स्पष्ट हो गईं। एक ये कि नकवी साहब को कोई बताने वाला नहीं कि ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है। दूसरे, उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि किसी भी भारतीय नागरिक को सीमा पार बीफ यात्रा का कष्ट उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये आनंद खुद भारत के अंदर ही उपलब्ध है। बस रेल या बस का टिकट कटा के पश्चिमी बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों या अरुणाचल प्रदेश, केरल और गोवा समेत किसी भी बीफ राज्य तक पहुंचने की तकलीफ कर लें। वरना तो सोचिए कि 55 करोड़ लोग इस गर्मी में, जब चील भी अंडा छोड़ दे, पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर कतार में कब तक खड़े रहेंगे। और भूतपूर्व जस्टिस मारकुंडे कार्टजो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DN झा और राहुल गांधी जैसे महान बीफ आशिक वीज़े की लाइन में धक्के खाते अच्छे लगेंगे क्या? और अगर पाकिस्तानी सरकार ने ये शर्त लगा दी कि आप सबका भरपूर स्वागत, मगर हमारा जासूस कबूतर भी साथ लेके आए, तो क्या होगा?
ये थे वसतुल्लाह खान, और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है।
जी विनीत, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करते हुए वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा किया था, और आज लगभग सभी अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से इस पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला लिखता है, हर हाल में लागू होगी वन रैंक वन पेंशन, प्रधानमंत्री। UPA सरकार के दौरान फ्रांसीसी कंपनी से रफाल विमान सौदे से जुड़ी खबर भी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारत अब फ्रांस से 126 के बजाय सिर्फ 36 रफाल विमान ही खरीदेगा। यूपीए सरकार ने 126 विमानों का सौदा किया था। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए 3 पन्नों का नया फॉर्म 31 जारी किया है और इस खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, आयकर रिटर्न का फॉर्म आसान। दिल्ली सरकार की मंत्री सत्येंद्र जैन और आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन के बीच विवाद और बढ़ गया है। गैमलिन ने उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखा है। ये खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, गैमलिन और आपके मंत्री में टकराव। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। और द हिंदू की एक खबर के मुताबिक बिहार चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस नीतीश के को करीब लाने के लिए लालू यादव से किनारा कर सकती है। शीर्षक है, कांग्रेस लाइकली टू कट लालू आउट ऑफ डील विद नीतीश। और द हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक आज पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, जो अभी तक गर्मी से लोग बेहाल थे, यानी उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। और अमर उजाला के पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक मानसून 4 जून तक आ जाएगा, तो जो लोग बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। और जो लोग कॉल ड्रॉप से परेशान रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर प्रकाशित की है दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर। इस खबर के मुताबिक कॉल ड्रॉप हुआ तो अगस्त से बैलेंस के रूप में मिलेगा पैसा, यानी कि आप फोन करते हुए जो कॉल ड्रॉप हो जाती थी, बीच में टूट जाती थी, उसके पैसे अब वापस मिलने लगेंगे, अगर ये खबर सही साबित होती है तो।
शुक्रिया दिलनवाज आपका। भारत के 4 पहलवानों ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किए, जिनमें लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी शामिल है। इन पहलवानों की कामयाबी को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता सुशील कुमार से बात की।
मैं आपके माध्यम से योगेश्वर दत्त को और पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने देश के लिए दिया है, जो देश उनसे उम्मीद करता है, तो उम्मीदों पे खरे उतरे हैं वो लोग और नए वेट में आके इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सराहनीय आप कह सकते हैं, क्योंकि नए वेट में आके सेट होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। योगेश्वर बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और आपको लगता है कि काफी दिनों बाद योगेश्वर दत्त बैट पर उतरे थे, हालांकि इससे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इसके अलावा एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जब एक लंबे समय बाद खिलाड़ी चोट से उभर कर मैदान में उतरता है तो उसके सामने काफी दिक्कतें होती हैं।
जी जी, और मैं पहले भी ये कहता हूँ, और वो बहुत मेहनती है और उसको जब कोई टूर्नामेंट लड़ना होता है तो वो टारगेट करके उसकी मेहनत करता है, और वो जब उस टूर्नामेंट में खेलता है, आप देख ही रहे हैं कि सभी टूर्नामेंट उसने बड़े अच्छे तरीके से सभी टूर्नामेंट निकाले हैं। और सीनियर खिलाड़ी का यही एक मेंटलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने उस टूर्नामेंट में अच्छा करना है।
और सुशील, आपको लगता है कि योगेश्वर दत्त ने अब इस बात का भरोसा भी दिला दिया है अपने चाहने वालों को कि वो पूरी तरह से फिट हैं और अब रियो ओलंपिक्स की जो उनकी तैयारियां हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है?
पक्का आप कह सकते हैं ये बात, और पूरी टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और योगेश्वर पूरा फिट है। अब बस आप सब की दुआएं चाहिए हैं कि फिर से देश के लिए भी अच्छा कर। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मैं मानता हूँ कि यही एक जरूरत थी कि पूरी टीम को एक बार अच्छा रिजल्ट देना, और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज आता है कि हाँ, इंडियन टीम जो है वो पूरी फिट है और वो अच्छा करेगी।
ये थे सुशील कुमार। और अब चलते चलते एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
अमरीकी सेनेट में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जासूसी कार्यक्रम पर गंभीर बहस हो रही है। रिपब्लिकन सेनेटरों में गतिरोध के कारण जासूसी को अनुमति देने वाला कानून कुछ घंटों के लिए निष्क्रिय हो सकता है। भारत में आज से सेवा कर 12.36 से बढ़कर 14% हो जाएगा, जिससे कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पूर्वी अफ्रीकी देशों के नेताओं से ठोस भरोसा न मिलने पर बुरुंडी के विपक्ष ने लोगों से सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। अमेरिका के पूर्व जनरल डेविड पेट्रेस ने इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से निपटने के लिए अमरीकी रणनीति में बदलाव की सलाह दी है। चीन की राजधानी बीजिंग में सभी इंडोर सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया है। हजारों निरीक्षक निगरानी करेंगे और धूम्रपान करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इराक के अनवार प्रांत में हिंसा से बचकर भाग रहे लोगों को इराकी अधिकारी देश के सुरक्षित हिस्सों में जाने से रोक रहे हैं। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया दिलनवाज पाशा आपका। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद।